आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 2 हफ्ते से अरे समाज में बहुत सारी एक्टिविटीज थी, थोड़ा माइक कम कर लेता सब। अभी हम पिछले हफ्ते नॉर्थ अमेरिका आर्य महासम्मेलन का आयोजन हुआ, नॉर्थ अमेरिका से विभिन्न भाग से और भारत से भी बहुत सारे विद्वान प्रतिनिधि लोगों की सम्मेलन 4 दिन तक चला। बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ समायोजित था। उससे पहले 4 दिन का सारे यजुर्वेद के मंत्रों के साथ यज्ञ का भी आयोजन था। तो अभी 2 हफ्ते से पूरा आर्य समाज उत्सव मुखर था। आज हम दोबारा नॉर्मल सत्संग के उसमें वापस आते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा कर रहे थे, 7वें समोल्लास की, अंग्रेजी में जिसको लाइट ऑफ ट्रूथ कहते हैं, महर्षि दयानंद जी का लिखा हुआ। 7वें समोल्लास में विशेष करके ईश्वर से संबंधित अलग अलग डायमेंशंस के ऊपर डिस्कशन किया गया है और वेदों के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा है। हम बहुत दिनों से ईश्वर के अलग अलग पक्षों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या उसकी एक्टिविटीज हैं, जो उसके बारे में हमारे अंदर परसेप्शंस हैं वो कितने सही हैं, गलत हैं। जिस रूप में हम ईश्वर के बारे में सुनते हैं व सुनते आ रहे हैं, वो कितना वो नैरेशंस हैं या ट्रू हैं, उनके बारे में काफी डिस्कस किया है। उसी प्रसंग में दो चार छोटी सी बातें, और एक जो बहुत बड़ा प्रश्न है ईश्वर के संबंधित, ईश्वर और मेरे बीच में क्या रिलेशनशिप है। बहुत सारे लोग बहुत सारे के तथ्य बातें करते हैं, जैसे कि ईश्वर मैं ही ईश्वर हूं, अज्ञान के कारण मैं खुद को पहचान नहीं पाता हूं, जैसे आप सुनते हैं अहम ब्रह्मास्मि आदि आदि। कुछ लोग आपको कहते हुए सुन मिलेंगे या आप खुद भी कहते होंगे कि मैं आई एम द पार्ट ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का एक अंश हूं, ब्रह्म का अंश हूं। कुछ लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि ईश्वर एक खास जगह पर रहता है जहां से सबको कंट्रोल करता है, सबको उसका मतलब सिर्फ है कि अपने अपने डिवोटीज को कंट्रोल करता है, अपने फॉलोअर्स को ही स्वर्ग में ले जाता है, बाकी सबको नरक भेजता है। और भी कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर और एक राक्षस, एक गॉड और डेविल है, दोनों के बीच में लड़ाई चलता है। जो डेविल के फॉलोअर्स होते हैं तो गॉड बिकम मैड ऑन देम, भगवान उन पर नाराज हो जाता है, और जो ईश्वर के भक्त होते हैं राक्षस नाराज हो जाते हैं। मानो अमेरिकन प्रेसिडेंटशिप के लिए लड़ाई चल रही है, जो रिपब्लिकन जीत जाए तो डेमोक्रेटिक उसके खिलाफ है, डेमोक्रेटिक जीत जाए तो रिपब्लिकन उसके खिलाफ है, गॉड और डेविल की लड़ाई जैसी। ऐसे बहुत सारे परसेप्शंस हम सुनते हैं और हम खुद भी प्रोपागेट करते हैं। और जब बड़ी मजेदार बात देखेंगे, दुनिया में बहुत दो चीजों के ऊपर हम सबका बड़ा कमांड होता है। एक तो पॉलिटिक्स के ऊपर, पॉलिटिशियन से ज्यादा नॉलेज हमें होता है हम सबको, और ईश्वर के ऊपर तो ईश्वर से ज्यादा ज्ञान हम सबको होता है। हम सबको मतलब जो बोलता है वो भी नीचे आ जाए, उसको भी 50 लोग घेर के सुनाते हैं कि ईश्वर क्या होता है, धर्म क्या होता है, सबको सब पता होता है। और क्योंकि सबको सब कुछ पता है, बिना पढ़े लिखे बिना समझे, इसीलिए आप समझ सकते हैं कितने तरह का पता है और कैसा पता होता है। और इसीलिए बहुत सारे परसेप्शंस बनते हैं, नरेशंस को हम सच मानते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक टॉपिक कुछ दिनों से चल रहा था। जैसे ईश्वर और आत्मा और परमात्मा, गॉड और द इंडिविजुअल बीइंग, द सुप्रीम बीइंग एंड इंडिविजुअल बीइंग, दो टू सेपरेट थिंग्स, दो अलग अलग चीजें हैं, इसके पर हम चर्चा कर रहे थे। और वो इसीलिए कि अगर आपको मैं खुद ही ब्रह्मा बनूंगा तो फिर मैं अपने आप को क्यों नहीं समझ पा रहा हूं, किसने मुझे रोका है समझने के लिए। अगर किसी ने मुझे रोका है खुद को ईश्वर होने पर भी नहीं समझ पाना, इसका मतलब वो मेरे से ज्यादा ताकतवर है, ईश्वर से ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब संसार में ऐसी कोई दूसरी चीज है जो ईश्वर से भी ज्यादा ताकतवर है। ईश्वर इतना ज्यादा शक्तिमान नहीं है कि इस अज्ञान को, मोह को, माया को हटा सके, और मैं खुद ब्रह्म या ईश्वर होते हुए भी उसको समझ नहीं पाता हूं। जो लोग मानते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, तो जो जिसका अंश होता है उसमें भी वही क्वालिटीज होते हैं। इफ यू आर ए पीस ऑफ आयरन, दस क्वालिटीज शुड बी सेम एज इन आयरन। अगर आप लोहे के बना हुआ है, लोहे के ही एक पार्ट है, तो लोहे में जो क्वालिटीज, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमारे में होना चाहिए। जैसे लोहे का बना हुआ घड़ा है, तो घड़े में भी वही क्वालिटीज होंगे लोहे के घड़े में। अगर मैं मिट्टी का बना हुआ हूं, मिट्टी का एक अंश हूं, तो मिट्टी की क्वालिटीज भी मेरे अंदर होनी चाहिए। अगर मैं ईश्वर का एक अंश हूं, तो मैं ईश्वर ही, ईश्वर जैसा बिहेव करना चाहिए। पर ऐसा जीवन में नहीं दिखता है। ईश्वर सर्वज्ञ है और मैं बहुत कम कुछ जानता हूं। ईश्वर सर्वव्यापक है, मैं कहीं का भी नहीं हूं। इतने बड़े संसार में मैं थोड़ा सा कुछ इंच जमीन पर ही रह सकता हूं। ईश्वर ये सारे इतने बड़े संसार को बनाता है, बिगाड़ता है, जो यूनिवर्सल लॉज है, रिथम है, उसको कंट्रोल करता है। मैं खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूं ठीक से। तो जो अंश होता है, इफ आई एम द पार्ट ऑफ गॉड, तो दैट सेम क्वालिटी शुड बी इनसाइड मी, बट वी नेवर सी दैट इन पब्लिक लाइफ। हम आम जीवन में ऐसा नहीं देखते हैं कि हम ऐसा हैं। चलो हम तो इंसान हैं, फिर पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी ईश्वर के ही पार्ट होंगे। तो आप एक पार्ट को दूसरा पार्ट खा जाता है। तो इसीलिए हम दो अलग अलग एंटिटीज हैं। वो सारे संसार को चलाने वाला परमात्मा है और मैं एक अल्पज्ञ हूं, वो ओमनिशियंट है और मेरे नॉलेज एक लिमिटेड है। वो ओमनीपोटेंट है पर मेरी पोटेंसी का एक लिमिटेशन है। मुझे शरीर लेकर बार बार अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेना पड़ता है, पर वो अजन्मा है, अनंत है, अनबर्न है। दो अलग अलग चीजें। तो हम दो अलग अलग होने के बावजूद भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज तो आपके मिट्टी के साथ भी है, पत्थर के साथ भी है, क्योंकि पत्थर में भी एग्जिस्टेंस है और आप में भी एग्जिस्टेंस है। पत्थर में भी सॉलिडिटी है और आप में भी सॉलिडिटी है। अगर आप सिमिलैरिटी ढूंढ के सोचने लगे कि यूनिटी ढूंढने लगे, तो फिर हमारे में और पत्थर में, हमारे में पानी में, हमारे में आग में बहुत सारे सिमिलैरिटीज मिलेंगे। इसी तरह ईश्वर में और हमारे में भी बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे वो चेतन है, कॉन्शसनेस है, मैं भी ऐसा ही हूं। वो मरता नहीं है, पैदा नहीं होता, आत्मा भी नहीं मरता, नहीं पैदा होता है, वगैरह वगैरह। उसके बावजूद भी हम दोनों अलग अलग हैं, पर हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है परमात्मा और मेरे, हमारे बीच में, वो मास्टर है और मैं उसका सर्वेंट हूं। सर्वेंट का अर्थ मतलब होता है जो खुद डिसीजन नहीं ले पाता है दुनिया के बारे में, वो स्वामी है, वो मालिक है, उसकी इच्छा से संसार चलता है। मैं खुद भी खुद का डिसीजन नहीं ले पाता हूं। जिन लोगों को गलतफहमी होती है कि मैं खुद का डिसीजन खुद लेता हूं, वो अगर थोड़ा बारीकी से देखें उनको पता चलेगा, वो अपने संस्कारों से, अपने हैबिचुअल पोटेंसी से, अपने फैमिली कल्चर से, ट्रेडिशन से, अपनी सोसाइटी से, जिस देश में रहते हैं वहां के एटमॉस्फेयर से इन्फ्लुएंस्ड होकर डिसीजन लेते हैं। वो इंडिपेंडेंसी ऐसी है जैसे गाय के गले में रस्सी बंधी हुई होती है, और एक लंबी रस्सी। बहुत सारे गांव में भारत में क्या करते हैं, जिनके घर में एक दो गायें होती हैं, तो उसको चराने के लिए छोड़ नहीं सकते क्योंकि कहीं चली जाएगी, उसको बांध भी नहीं सकते क्योंकि घास खिलाना है, तो उसको बड़े से खुले मैदान में बांध देते हैं। उसके गले में रस्सी बांध के कम से कम 50 मीटर 100 मीटर की रस्सी बांध देते हैं किसी खूंटी पर, और वो गाय घूम घूम करके घास चरती है और भाग भी नहीं सकती है। जब 50-100 मीटर के एरिया में गाय घूमती है, उसको ये फीलिंग होती है, ऐसा एहसास होता है कि मैं मैं फ्री हूं, मैं आजाद हूं, मैं कहीं भी जा सकती हूं। और वो जा पाती है, घास खाती है कहीं भी। पर जब उसको ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी जा सकती हूं और वो दौड़ने लगती है, उस 100 मीटर रस्सी के बाद फिर गले में खिंचाव होने लगता है, फिर वापस आ जाती है। उसके अपने एक लिमिटेशन है। हम उसी तरह के हैं, हम कुछ लिमिटेशन के अंदर बड़ा फ्री हैं और उस फ्रीडम को हम समझते हैं कि इट्स माय एब्सोल्यूट फ्रीडम। कोई भी व्यक्ति कभी भी एब्सोल्यूट फ्री नहीं हो सकता। आप चाहकर भी आपको कोई कर ही नहीं सकता। आप किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। आपका हर डिसीजन आपका अपना नहीं होता है, वो कहीं ना किसी से इन्फ्लुएंस्ड होता है और मजबूरी में होता है। कभी आप करके देखिए, आपके सोच करके देखिए। तो हमारी आजादी का एक सीमा है, पर परमात्मा पूर्ण स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। हम सिर्फ कुछ चीजों के मामले में स्वतंत्र है। इवन जिसको हम स्वतंत्र या फ्री कहते हैं, वो फ्रीडम भी एक रिलेटिव फ्रीडम होता है, वो सापेक्ष स्वतंत्र होता है। इसीलिए हम जो कुछ करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सर्वेंट अपने मास्टर के साथ करता है। उसको कुछ फ्रीडम है, कुछ अपनी मर्जी से कर सकता है, पर इनडायरेक्टली उसके ऊपर किसी ना किसी का कंट्रोल है। मैं चाहूं तो किसी पर गुस्सा कर सकता हूं, मैं चाहूं तो किसी को मार सकता हूं, मैं किस चाहूं तो किसी को प्यार कर सकता हूं, पर उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका जो रिजल्ट होगा, वो मेरे हाथ से बाहर होगा। उस पर मेरा कंट्रोल नहीं होता है। मैं जो चाहे कर सकता हूं, पर उसके बाद जो मेरे साथ होगा उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इवन आप किसी से प्यार भी करते हैं, बड़ी अच्छी चीज है प्यार करना, पर अगर आप क्योंकि मैं फ्री हूं मैं किसी से भी प्यार कर सकता हूं, आप बीच रास्ते में खड़े होकर किसी से प्यार करने लग जाएं, फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, फिर आपका कंट्रोल नहीं होगा उस पर, फिर आप रोते फिरेंगे। इसका मतलब आपको जो फ्रीडम मिला है वो कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। इट्स इवन इन योर सोसाइटी यू डोंट हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम। आप किसी के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, पर उसका जो रिजल्ट होगा उसको सहने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा ना। आप गाड़ी चलाते हो, जो मर्जी चला सकते हो, आपको कौन रोकेगा? आप ड्राइवर हो, आप लेफ्ट की जगह राइट चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्री हो। पर गाड़ी चलाने के बाद जो रिजल्ट होगा उसको भोगने के आपको ही भोगना पड़ेगा, और वो आपके हाथ में नहीं होता है। इसीलिए हम कितने भी अपने आप को इस संसार में खुला समझें, कोई ना कोई इनविजिबल वो रस्सी है जो हमें बांध के रखती है, वो हमारा मालिक है, हम उसके नौकर हैं, दास हैं, वो हमारा सपोर्टर है, वो हमारा आश्रय है, और हम आश्रित हैं, वी आर सपोर्टेड। अगर ये हवा नहीं होता, पानी नहीं होती, आकाश नहीं होता, सूरज नहीं होता, तो कल्पना करिए हमारी जिंदगी कैसे होती। पूछिए जिस राज्य में पानी की कमी हो जाती है, जैसे आजकल यूएसए में, कैलिफोर्निया में बड़े पानी की बड़ा प्रॉब्लम्स हैं, उनसे पूछ के देखिए कितना तरस रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे जगह पर जहां पानी की कमी हो चुकी है, अल्दो इट्स नॉट ए नेचुरल फेनोमेना, इट्स ए मैन मेड प्रॉब्लम, कैलामिटी, ये इंसान के द्वारा बनाई हुई समस्या है। उसके बावजूद भी उन लोगों से पूछिए जहां पानी कम है और उसके लिए कितना वो तरसते हैं। तो हमारे पैदा होने से पहले हमें हर तरह का सुख मिले, ईश्वर ने हर तरह की व्यवस्था की है, उसके आश्रय के कारण हम हैं। सरकार पानी बेचता है, इंसान पानी बेचता है, ईश्वर पानी नहीं बेचता। ईश्वर ने आपको फ्री में पानी दिया है। आप मेडिकल में जाएं, वो आपको हवा भी बेचते हैं, आपको ऑक्सीजन के लिए पैसा लेते हैं, पर ईश्वर ने आपको फ्री में ऑक्सीजन दे रखा है। कोई टैक्स नहीं लगाता, कोई पैसा नहीं लेता। आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, सरकार या कंपनियां आपसे पैसा लेती हैं, सरकार ने फ्री में आपको लाइट दे रखी है। 12 घंटे तो आप वैसे ही फ्री लाइट से लेते हैं, अब वो भी बेचने की तैयारी हो रही है ना। तो वो अगर उसका आश्रय नहीं होता तो हम नहीं होते, हम उसके आश्रित हैं, इसीलिए वो पूजा के लायक है और हम पुजारी हैं और वो पूज्य है। वो पूजा करने लायक है और हम पुजारी हैं। उन इंसानों पर बड़ी दया आती है जो इंसान भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर इंसानों को पूजते हैं। उनसे ज्यादा मंद बुद्धि दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जिस ईश्वर ने आपको हवा दिया, पानी दिया, पत्थर दिया, धरती दी, आकाश दिया, सूरज दिया, मां बाप दिया, ये शरीर दिया, शरीर की फंक्शन को दिया, ये जो संसार में इतने बड़े संसार की जो जो एक फंक्शन है उसको जिसने किया, उसको छोड़ करके छोटी मोटी मिरेकल के नाम पर बाबाओं को, गुरुओं को, पैस्टरों को, मुल्लाओं को भगवान की तरफ पूजने वाले लोगों से ज्यादा क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उनसे ज्यादा मति भ्रष्ट व्यक्ति बहुत कम संसार में आपको मिलेंगे। इसलिए अगर कोई पूजा के लायक है सज्जनों देवियों, वो सिर्फ ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। भगवान जैसा कोई नहीं है। इट्स एब्सोल्यूट अनसेकेंडरी, सिंगल, देयर इज नो सेकेंड। उसका कोई दूसरा नहीं है, ना कोई उसकी बराबर है, ना कोई इसका सब्स्टिट्यूट है, ना कोई इसका डिप्यूटी है, ना कोई इसका सुपीरियर है। वो अकेला है, एकम अद्वैतम। ध्यान रखिए, अगर जीवन में किसी के प्रति भक्ति भाव पनपे वो सिर्फ ईश्वर के प्रति होनी चाहिए। जो लोग ईश्वर का रास्ता दिखाते हैं उनको आप रेस्पेक्ट कर सकते हैं, पर वो ईश्वर ना ईश्वर के बराबर ना ईश्वर की ईश्वर जैसा कभी नहीं हो सकते, क्योंकि बड़ा से बड़ा सो कॉल्ड भगवान इंसान भी कितना भी बड़ा समझदार हो, चमत्कारी हो, वो एक रेत भी नहीं बना सकता। आपके शरीर के इतने लाखों लाखों तरह के पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट भी वो नहीं बना सकता। वो सिर्फ परमात्मा है जो इस संसार की इतनी कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स को जो बनाता है, कंट्रोल करता है। तो अकेला वही पूजा के लायक है और कोई भी नहीं। हम सब उसके पूजक हैं, पुजारी हैं। कोई एक पुजारी दूसरे पुजारी को भगवान समझे ये बेवकूफी है। हम सब पुजारी हैं, हमारे बड़े हमारे छोटे, हम सब मिलके उस ईश्वर के पुजारी हैं। वही शासक है, हम सब उसके शासित हैं। इज द रूलर एंड वी ऑल आर रूल्ड बाय हिम। इवन जो हमें रूल करते हैं सोसाइटी में, वो हमारा प्रेसिडेंट हो, किंग्स हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर्स हो, मिनिस्ट्री हो, उनको भी मरना पड़ता है, उनको भी बीमारियां होती हैं, उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी पैदा होना पड़ता है। विदाउट आस्किंग देयर विश कि वो कहां पैदा होना चाहते हैं, कोई नहीं पूछता। जब हम पैदा होते हैं कि हम कहां पैदा होंगे कि नहीं होंगे, देयर इज नो राइट, जब उसमें हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। तो हम किसी दूसरे के द्वारा रूल्ड होते हैं, और जिस दूसरे के द्वारा रूल्ड होते हैं वो जो इनविजिबल बींग है, दैट इज कॉल्ड गॉड। वही ईश्वर है, वही अकेला शासक है, हम उसी के द्वारा शासित होते हैं। बाकी 50-100 साल के जीवन को जीने के लिए, समाज को एक सिस्टम बनाने के लिए इंसान ने अपना एक सिस्टम बनाया है कि अलग अलग देशों में अपना अपना रूलर चुनता है, पर वो रूलर भी किसी के द्वारा रूल्ड होता है। इसी तरह वो हमारा पिता है, वही हमारी माता है और हम उसके संतान है। क्योंकि जिस मां बाप ने हमें जन्म दिया है उन्हें पता ही नहीं था कि मैं उनके पेट में उनके गर्भ में आने वाला हूं। वो तो सिर्फ मीडिया है, मीडियम है। जिसने डिसाइड किया, जिसने ये निर्णय लिया कि मैं ऐसे मां बाप का ही संतान बनूं, वो मेरे मां बाप नहीं थे। जिसने ये निर्णय लिया हो कि मुझे यही चाहिए, मैं पैदा हुआ तो हुआ, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं जिस भी रूप में हूं, जैसा भी हूं, तो मेरे माँ बाप भी जहां से आए, उनके माँ बाप भी जहां से आए, वो ट्रेडिशन से, वो परमात्मा सबकी माँ है, आप उसको माँ कहो, बाप कहो, कुछ भी कहो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसीलिए देखेंगे हमारे उपनिषदों में ईश्वर के लिए जो जो एडजेक्ट जो प्रोनाउंस होते हैं, वो ना दैट, ना वो ही होता है ना शी होता है, इट्स ऑलवेज इट, क्योंकि ना उसका कोई लिंग है। आप उसको पुल्लिंग में डाक्स बुला सकते हो, आप उसको स्त्रीलिंग में बुला सकते हो, आप उसको नपुंसक में बुला सकते हो, वो लिंगों से ऊपर है, वो हमारी मां भी है, बाप भी है, वो हमारा सब कुछ है। इफ गॉड एंड जीवा डिफरेंट, देन हाउ विल यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग महावाक्याज ऑफ द वेदाज। जो लोग थोड़ा सत्संग वगैरह करते हैं अलग अलग जगह, साधुओं के, सन्यासियों के, आचार्यों के कुछ स्वाध्याय करते हैं थोड़ा बहुत, उनको ये दो चार वाक्य बहुत सुनने को मिलता है महावाक्य के। अब तो आजकल तो महावाक्यों की ढेर हो गया है, जिसको देखो उसका अपना एक ग्रेट सेइंग होता है। जैसे बड़ा प्रसिद्ध है, अहम् ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म वगैरह वगैरह, बहुत सारे जगह आपको सुनने को मिलता होगा। बड़े इंटेलेक्चुअली उसको एक्सप्लेन करते होंगे और आप मिसमोराइज्ड हो जाते होंगे। पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसको महावाक्य किसने कहा, कहां कहा, इसका कोई प्रूफ नहीं है। कल मैं कोई सेंटेंस बना दूं और बोलूं ये महावाक्य हैं, दीज आर द ग्रेट सेइंग्स, और मेरे फॉलो में कुछ अपना फॉलोअर्स बना डालूं और वो बड़े डायनामिक फॉलोअर्स हों जो प्रचार कर सकते हैं, 50-60 साल में मेरे कहे हुए हर बात महावाक्य बनेगा। उत्तर प्रदेश में एक बाबा थे, बहराइच कोई जिला है नॉर्दर्न यूपी में, वहां बड़ा प्रसिद्ध बाबा हुए देवराहा बाबा। प्रसिद्ध इसीलिए कि भारत में ज्यादातर प्रसिद्ध बाबा वो होते हैं जिनके लीडर्स और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जिनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो देवराहा बाबा प्रसिद्ध हुए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर, राजीव गांधी वगैरह लोग उनके फॉलोअर्स बने। वो एक मूर्ख व्यक्ति थे, अनपढ़ गांव के थे, उनके पढ़े लिखे नहीं थे। वो एक पेड़ के शाखा पर बैठते थे पैर को नीचे करके, तो जो लोग उनके फॉलोअर्स आते थे उनके पैर, वो उसको एक लात मारते थे सर पर, वो उनका आशीर्वाद होता था। और क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, गंवार थे, उठपटांग कुछ उगड़ू बुगड़ू बोलते थे, तो उनके फॉलोअर्स में बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पर्सन भी थे। जब प्राइम मिनिस्टर फॉलोअर बन सकता है, कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वगैरह भी फॉलोअर बन सकते हैं, नेचुरली बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर भी बनते हैं और स्कॉलर्स भी बनते हैं, तो बहुत सारे स्कॉलर्स भी उनके फॉलोअर्स थे, तो वो उसको इंटरप्रेट करते थे। मान लीजिए उन्होंने बोला खा खी खू खा खू खू कुछ बोला, और स्कॉलर्स उसको इंटरप्रेट करते हैं, खू खा मतलब आकाश, ऊ मतलब दैट, इसका मतलब ब्रह्म चैतन्य, और लोग मिसमोराइज्ड हैं। क्या ज्ञान की बातें देखो कहां निकलता है। अरे यकीन मानिए, दुनिया भर में जो सो कॉल्ड रिलीजियस बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, उस बुक्स में क्या लिखा वो आप उतना ही जानते हैं जितना उनके इंटरप्रिटरों ने आपको इंटरप्रिटेशन के द्वारा बताया। और इंटरप्रिटर को उस बुक से कोई मतलब नहीं था, उनको खुद में भी पता होगा नहीं होगा, वो इंटेलेक्चुअल थे, उनके अंदर वो इंटेलेक्ट, उसको उन्होंने यूज किया, मिस यूज किया, सही यूज किया, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। दे यूज देयर इंटेलेक्ट टू एक्सप्लेन इट, दैट वे यू गॉट दैट नॉलेज। वो किसी भी रिलीजियस बुक आपके पास है, आपको बहुत कम मौका मिलता है असली रिलीजियस बुक को पढ़ने का, आपको सिर्फ इंटरप्रिटर का इंटरप्रिटेशन को आप होली बुक मानते हो। इसी तरह किसी आचार्य ने प्रचार किया कि ये चार महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह वगैरह, पर भाई महावाक्य का क्या डेफिनेशन है, कहां से मिलता है? बोले वेदों में मिलता है। तो वेद ढूंढा तो कहीं, ये वाक्य तो वेदों में होते ही नहीं है, ये ब्राह्मण ग्रंथों में मिले, वो भी नरेशन के बीच बीच में कहीं कुछ ही प्रसंग में। तो इसी तरह हमारी जो जो धार्मिक चीजें ऐसी चलती हैं, तो दीज आर नॉट द टेक्स्ट ऑफ फ्रॉम द वेदास, दे आर द कोटेशंस फ्रॉम द ब्राह्मण टेक्स्ट, एंड नो स्क्रिप्चर कॉल दीज कोटेशंस एज महावाक्य और ग्रेट सेइंग्स। जैसे आजकल बहुत सारे महामंत्र चलते हैं, आपको पता है या नहीं है? पता नहीं, पता है तो भी थोड़ा पक्का कर देता हूं, अगर पता नहीं है तो पता चले। संस्कृत में जो जो लिखे गए जो सेंटेंसेस होते हैं, उनको चार तरह से बांटा जाता है, उनके चार तरह के नाम होते हैं। जो वेद हैं, चार वेदों के जो सेंटेंसेस है, जो लैंग्वेज, उसको मंत्र बोलते हैं। तो वेद की जो वाक्य है उसको मंत्र बोलते हैं। मंत्र का अर्थ होता है विचार, थॉट, नॉलेज। बाकी संस्कृत में जो जो क्लासिकल संस्कृत में जो पोएम लिखे जाते हैं उसको श्लोक बोलते हैं। कुछ प्रोज में होते हैं जिसको आप गद्य कहते हैं, और कुछ सूत्र रूप में मिलते हैं। सूत्र का मतलब जैसे आपके मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूलाज होते हैं उस टाइप के सूत्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे चार पांच वर्ड्स में बा चार पांच लेटर्स में पूरी की पूरी बातें कही जाती हैं। पर आजकल आपको बाजार में बहुत सारे, किसी को भी देखो सब मंत्र बोलता हुआ, महामंत्र। जैसे कुछ लोग बोलते हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये महामंत्र। ये मंत्र कहां? मंत्र तो वेद के वाक्यों को कहते हैं, अगर आप हिंदू हो। अब हिंदू नहीं हो वो दैट इज डिफरेंट मैटर। मंत्र तो सिर्फ वेद के वाक्यों को कहते हैं, ये वेदों में तो ये कहीं मिला नहीं। फिर महा कैसे हो गए? इसी तरह सबके देखेंगे, आप गुरु मंत्र देते हैं, एक बार आप किसी गुरु के पास जाएंगे ना दीक्षा लेने के लिए, मंत्र लेने के लिए, बड़े अजीब अजीब मंत्र मिलते हैं। मैं एक बार बड़े इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गुरु के पास, गुरु के आश्रम में गया, दिल्ली में नोएडा में उनका बहुत बड़ा आश्रम था और वर्ल्ड फेमस है जी। वो सिखाते हैं मेडिटेशन, सिखाते हैं भावातीत ध्यान। तो गुरु बनानी पड़ती है, फिर वो आपको मंत्र देंगे, उस मंत्र पर ध्यान करना है। अब ये जो मंत्र देते हैं, वैसे तो आप में से जो बड़े गुरु भक्त हैं उनको भी मंत्र मिलता होगा। ये मंत्र देने वाले गुरु एक चीज आपको हमें बोलता है, इसको किसी को बताना नहीं, नहीं तो बड़ा अनिष्ट होगा। पर आपको रियली पता है क्यों बोलते हैं कि किसी को बताना नहीं? जैसे ही आप किसी को बताओगे ना कि गुरु ने मुझे ये मंत्र दिया, आप जिस फ्रेंड्स को, फ्रेंड को, रिलेटिव को बताओगे, वो आपको इतना बुद्धू समझेगा कि ये क्या उटपटांग चीजें बोलते हो और कहते हो ये मंत्र है। गुरुओं को पता है ये कितना उजुल फुजुल बातें हैं, और इसीलिए बोलते हैं किसी को बताना नहीं। जैसे कि हमारे वो आर्य महासम्मेलन के दिन एक आचार्य बड़े सुंदर कहानी सुना रहे थे, स्वामी दयानंद जी के लिखे गए कहानी। वैसे ही मंत्रों का बड़ा साम्राज्य चलता है। वो कहानी उन्होंने सुनाई थी कि ऐसे एक चोर था और उसको सजा के रूप में गांव वालों ने उसको नाक काट दिया। तो नाक काट दिया तो वो बेचारा अब जहां भी जाए लोग उसको चिढ़ाने लगे, चोर है चोर है। तो वो गांव छोड़ के दूसरे गांव में चला गया, पर क्या रीजन तो देगा कि मेरा नाक क्यों कटा हुआ है? वो गांव ये दूसरे गांव में अनजान गांव में जाकर गांव के बाहर रहने लगा, कुटिया डाल के। जो भी लोग उसके पास आते थे पूछने के लिए तुम्हारा नाक क्यों कटा है, तो वो बोलते था कि मैंने ईश्वर का दर्शन किया है, और ईश्वर का दर्शन करने के लिए नाक कटनी जरूरी होती है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, जैसे कि आप लोगों को लगता है उजुल्फ, पर कुछ लोगों को बड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। वहीं से शुरू होती है पूरा गुरुडम की हिस्ट्री। तो कुछ लोगों को समझ में आया, उन्होंने बोला कि हम भी जिंदगी भर तपस्या कर रहे हैं ईश्वर को पाने के लिए, कहीं नहीं मिल रहा है। हमें किसी ने बताया नहीं कि ये गुरु मंत्र है कि नाक काटनी पड़ती है। आप असली गुरु हो, बढ़िया बिल्कुल हो, हमारा भी कुछ कल्याण करो, बोले नाक काटनी पड़ेगी। तो कोई एक राजी हो गया, उसके नाक कटवा दी। कटवाने के बाद उसको कोई भगवान तो मिले नहीं, उसने पूछा कि गुरुदेव ये तो कुछ ईश्वर तो कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले देख, चिल्ला के मत बोल, लोग कहेंगे कितना बुद्धू हो, तुझे इतना अकल नहीं है, ईश्वर देखने के चक्कर में नाक कटवा दिया। तो अच्छा, ईश्वर इसे नहीं मिलता, अरे कुछ नहीं मिलता, फिर मैं क्या करूं, बस कुछ नहीं करना। अब बताओगे कि नाक इसीलिए काटा कि ईश्वर देखना था, लोग कहेंगे कितना बुद्धू हो। अब बोलो कि मैंने ईश्वर देखा इसलिए नाक काटना पड़ा। सज्जनों देवियों, धीरे 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 आसपास के एरिया में सैकड़ों हजारों लोग नाक कटे मिले, ब्रह्मज्ञानी। राजा तक बात पहुंची, मंत्री तक बात पहुंची कि इस देश में इतने लोग हैं जो ईश्वर को पा चुके हैं, और हम मंत्री होकर के, राजा होकर हम इतने मूर्ख हैं, यह असंभव है, हमारा भी नाक कटवाया जाए, हम भी ईश्वर दर्शन करेंगे। सबको नाक कटने के बाद पता है कि ये मेरे साथ फ्रॉड किया गया, पर उसके बावजूद भी वो दूसरों को समझाता है कि नाक कटा इसलिए कि ईश्वर मिला, अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो ये जो महामंत्रों का खेल भी इसी टाइप का थोड़ा बहुत है। ये जो गुरु जो दीक्षा देता है कान में, इसी तरह का अजीबोगरीब मंत्र होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, पर बताना इसीलिए नहीं है कि बताओगे तो पब्लिक को पता चलेगी कितना बुद्धू हो। वो उसको बुद्धू नहीं कहेंगे, उनको तो पता है, वो उनका काम है। तुम कितने पढ़े लिखे होकर इतना बुद्धू, ऐसे एक अधपढ़ अनपढ़ बाबा के चक्कर में पढ़ के ये उटपटांग वाक्यों को बोलते हो, महामंत्र है इसलिए छुपा के रखो और जप करो, होता कुछ नहीं है भक्त देवी जनों सज्जनों। जब तक आपके मन में ईश्वर के प्रति वो परम श्रद्धा भक्ति पैदा होती ही नहीं है, आप ईश्वर के साथ जुड़ नहीं सकते हो, कितना गुप्त मंत्र जपो, कितना महामंत्र जपो। इसी तरह ये जो अहम ब्रह्मासि तत्वमसि वगैरह वगैरह, ये महावाक्य है, इसका कोई कहीं प्रमाण नहीं है हमारे पास, ना किसी ऐसे वेदादि ग्रंथों में लिखे हुए। द ट्रू मीनिंग्स आर एज फॉलो, उसका क्या मतलब है, वी टेक द फर्स्ट कोटेशन, वी डजंट मीन आई एम गॉड, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ सीधा है, संस्कृत में है, इसका सिंपल मीनिंग आई एम द गॉड, बट एक्चुअली इसका मीनिंग ये नहीं है जिस भी ग्रंथ से लिया गया, ब्राह्मण ग्रंथों से। हियर इज द यूज व्हाट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द थिंग दैट कंटेन्स और सपोर्ट्स ऑफ द थिंग व्हिच इज कंटेन्ड देयर इन और सपोर्टेड देयर बाय, जस्ट एज वी से वॉच प्लेटफॉर्म्स आर शाउटिंग। स्टेज पर कोई बैठा हुआ है जी, और बैठ करके, और कोई वो ऑडियो सिस्टम के पास बैठा हुआ है, जैसे आप रास्ते में जाते हैं ना, किसी को आप जानते नहीं, नाम नहीं जानते हैं, आप कहते हैं वो लाल कपड़े को बुलाओ, लाल शर्ट को बुलाओ, लाल शर्ट को बुलाओ, मतलब लाल शर्ट को थोड़े सुनाई देगा, वो तो शर्ट है, लाल शर्ट जिसने पहना उसको बुलाओ। इसको संस्कृत में कहते हैं मंचाह क्रोशंती, प्लेटफॉर्म्स आर शाउटिंग, मतलब मंच पर कोई बैठा है और वो चिल्ला रहा है, आप उसका नाम नहीं जानते, आप कहते हो वो देखो वो स्टेज चिल्ला रहा है, स्टेज चिल्ला रहा है मतलब स्टेज में बैठा हुआ व्यक्ति चिल्ला रहा है। ऐसे हम नॉर्मल बातचीत में भी बोलते हैं, अगर आपके पास एक डंडा है, वह आप कोई खास तरह के कपड़े पहने हो, खास तरह के बाल है, किसी को आपका नाम पता नहीं, तो वो उसी तरह आपको बोलता है, देखो वो ग्रीन शर्ट बोल रहा था,
ग्रीन शर्ट नहीं बोलता है, ग्रीन शर्ट वाला बोलता है। नाउ द प्लेटफॉर्म्स बिक इनानिमेट डू नॉट पोजेस द पावर ऑफ शाउटिंग, हेंस इट मीन्स दैट द मेन ऑन दोज प्लेटफॉर्म शाउट, दस द प्लेटफॉर्म्स दैट सपोर्ट द वॉचमैन आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द मेन हु आर सपोर्टेड बाय सिमिलरली, इट शुड बी अंडरस्टूड इन द एबव टेक्स्ट दैट गॉड द सपोर्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द सोल विच इज सपोर्टेड देयर बाय और कंटेंट देयर इन। जब मैं बोलता हूं कि रेड शर्ट वाला रेड शर्ट चिल्ला रहा है, या वो जो या मंच का मतलब होता है, आजकल आप देखते होंगे जो बड़े बड़े सरकारी बिल्डिंग्स होते हैं उनके चारों तरफ बड़े बड़े सिक्योरिटी पॉइंट्स बनते हैं, ऊंचा ऊंचा होता है वो स्टेज, उसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड खुला चढ़ा होता है और वो किसी को बुला रहा है। तो देखो वो सेकेंड स्टेज बुला रहा है, सेकेंड स्टेज मतलब वो सेकेंड स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति बुला रहा है। इसी तरह जब मैं कहता हूं कि अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्मा जिसका सपोर्टर है, जिसने सपोर्ट दिया है इस आत्मा को, मैं उस ब्रह्म में स्थित ब्रह्मलीन व्यक्ति हूं। इफ यू से दैट ऑल थिंग्स एग्जिस्ट इन गॉड, मैं उस ब्रह्म में स्थित व्यक्ति हूं जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, मेरे अंदर भी है, मेरी आत्मा भी उसके अंदर है, मैं उस ब्रह्मस्थित व्यक्ति हूं। आप सवाल पूछेंगे, इफ यू से दैट ऑल थिंग्स एग्जिस्ट इन गॉड, व्हाट इज देन द स्पेशियल ऑब्जेक्ट ऑफ सेइंग दैट द सोल एग्जिस्ट इन गॉड, वो तो सब कुछ ईश्वर के अंदर है, फिर ये बताने की क्या जरूरत है कि मेरे आत्मा ईश्वर के अंदर है और उसके लिए अहम ब्रह्मास्मि की आप डिफाइन करते हो। एक दो मिनट लेकर समाप्त करेंगे। वी आंसर दैट दो इट इज ट्रू दैट ऑल थिंग्स एग्जिस्ट इन गॉड, नथिंग इज सो क्लोज टू गॉड एज द सोल। बींग पोजेस्ड ऑफ सिमिलर एट्रीब्यूट्स, इट इज ओनली द ह्यूमन सोल, इट्स नॉट ह्यूमन एक्चुअली सोल, द अंग्रेजी ट्रांसलेशन गलत है, that can know God, and during the time of emancipation lives in the very presence of God, having direct cognizance of him all the time. Isko thoda samjhiyega, jab vyakti us paramatma ko ka gyan kar chuka hai, jisko aap kehte hain realized person, enlightened person, aur jab uske muh se wo udgar nikalta hai अहम ब्रह्मास्मि, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लकड़ी को आप जलाते हो ना, वो लकड़ी अब जल रहा है, जब आप कहते हो ये आग है तो आप किसको दिखा रहे हो, लकड़ी को दिखा रहे हो, लकड़ी आग नहीं है, लकड़ी तो आग का सपोर्टर है, आग लकड़ी में है और लकड़ी इटसेल्फ बिकम्स द फायर, बट द वुड इज नॉट फायर, but it looks like the wood is fire because wood is the supporter of fire. इसी तरह जब तक वो लकड़ी जल रही है आप क्या कहते हो कि देखो आग है, आग को मत छुओ, आप अपने बच्चे को क्या बोलते हो, ये थोड़े बोलते हो कि लकड़ी को मत छुओ, आप बोलते हो आग को मत छुओ। इसी तरह आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाता है, वो जो एक उस समय की जो अनुभूति है, उस समय ऋषि पुकारता है, बोल पड़ता है कि अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द फायर, बट हियर एक्चुअली फायर समथिंग डिफरेंट देन द वुड, बट व्हेन वुड इटसेल्फ बिकम फायर, इट्स नॉट वुड इटसेल्फ बिकम फायर, वुड इज द सपोर्टर ऑफ फायर, बट एट दैट मोमेंट वुड लुक्स लाइक द फायर। जैसे ही वो लकड़ी जल के खत्म हो जाए, आग बुझ जाती है, लकड़ी खत्म होते ही राख बच जाता है, वो लकड़ी अग्नि नहीं था। इसी तरह इन द रिलेशन ऑफ गॉड टू द सोल इज दैट ऑफ ए कंटेनर और सपोर्टर टू दैट थिंग कंटेन्ड दे आर इन और सपोर्टेड दे आर बाय एंड दैट ऑफ वन कंपेनियन टू अनदर। इट इज क्लियर देयरफॉर दैट गॉड एंड सोल आर नॉट वन। जस्ट एज ए पर्सन सेज इन रेफरेंस टू अनदर ही एंड आई आर वन, जैसे नॉर्मली भी आप बातचीत में नहीं कहते हम दोनों एक ही हैं, भाई एक कैसे हैं जी, मतलब आप दो दोस्त हैं, पति पत्नी हैं, दो भाई बहन हैं, जो भी आप कहते हैं हम दोनों एक हैं, कैसे एक हुए। जैसे ये भारत में आप भारत में भारत से दो लोग आए किसी नए जगह पर जाते हैं, तो कहते हैं हम दोनों एक हैं। कुछ सिमिलैरिटीज होती है तो हम कहते हैं एक हैं, एक्चुअली उसमें सैकड़ों चीजें हैं जो अलग है, पर कुछ खास पॉइंट पर हम एक जैसा होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं एक हैं। इसीलिए ईश्वर और आत्मा के अंदर कुछ एक खास पॉइंट पर बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब ऐसी ऐसे वाक्य निकलता है। इनकम्प्लीट हार्मोनी विथ ईच अदर इन द सेम वे द ह्यूमन सोल बींग इरेजिस्टिबल ड्रॉन टूवर्ड्स गॉड बाय इट्स एक्सट्रीम लव फॉर हिम एंड देयर बाय कंप्लीटली इमर्स्ड इन हिम ड्यूरिंग समाधि कैन से गॉड आई आर वन, गॉड एंड आई आर वन। जैसे वो जलता हुआ जलती हुई लकड़ी और आग दोनों एक ही होते हैं, दैट इज इन हार्मोनी विथ ईच अदर एज वेल एज ऑक्यूपाइंग द सेम स्पेस। तो नेक्स्ट चर्चा हम अगले बार करेंगे, तो थोड़ी सी आपके सामने आज के इस विचार अहम ब्रह्मास्मि के विचार आपके सामने रखने की कोशिश की, आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।